नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। अमेरिका फिनलैंड की टेक्नोलॉजी से बने पीएम आवास योजना के मकान 1,152 घरों की पीएम मोदी ने दी सौगात। कैसे पा सकते हैं आप इनका लाभ? 6 शहरों में गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं सस्ते और हाईटेक मकान। पीएम आवास योजना के तहत कैसे करें अप्लाई? पीएम नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1,152 मकानों का उद्घाटन कर दिया है। ये मकान 116 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं। इन हाईटेक मकानों को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। ऐसे मकानों में सिर्फ पहले से तैयार कंक्रीट निर्माण प्रणाली का उपयोग किया गया है। इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका और फिनलैंड में किया जाता है। भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नए जमाने की ग्लोबल तकनीक, मटेरियल और प्रोसेस का बेहतर उपयोग किया गया है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत देश के 6 शहरों में गरीबों के लिए किफायती मकान बनाए जा रहे हैं। इसमें अलग अलग देशों की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इन मकानों के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए देश के वो कौन से 6 राज्य हैं जहाँ ये हाईटेक मकान बनाए जाने हैं। 6 राज्यों में बनेंगे हाईटेक घर, अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट, चेन्नई। देश के ये वो शहर हैं जहां प्रधानमंत्री ने पिछले साल 1 जनवरी को लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। इनमें से चेन्नई में घर बनकर तैयार हो गए हैं। किसे मिलेगा हाईटेक घरों का लाभ? देश में आज भी एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं है। ऐसे में ये लोग कहीं भी रहकर अपना गुजारा करते हैं। इन आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की सहायता के लिए सरकार ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसमें लोगों को कम कीमत पर लोन दिया जाता है, जिसमें सब्सिडी दी जाती है। वहीं इस लोन को चुकाने के लिए 20 साल तक का समय मिलता है। योजना के तहत कैसे करें अप्लाई? सबसे पहले आपको पीएम आवास योजना की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पूरी जानकारी भरनी होगी और मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। अब जब आप यहां मांगी गई सभी जानकारियां दर्ज कर चुके हैं, तो अब आपको अपना आईडी प्रूफ की जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको प्रिंट और डाउनलोड वाले विकल्प का चयन करना है। ऐसा करते ही आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। अब कहानी सिंधिया राजघराने की। कैसे आई राजमाता और माधव राव में दूरियां? माँ बेटे के बीच कैसे आ गए सरदार आंगरे? ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी और अपने दौर की नामचीन बीजेपी नेता राजमाता विजया राजे सिंधिया की वसीयत ने एक वक्त पर सबको चौंका दिया था। एक तरफ तो उस वसीयत में राजमाता ने अपनी जायदाद का बंटवारा ना करके उसे अपनी बेटियों को दे दिया था। दूसरी तरफ बेटे माधवराज सिंधिया से अपने अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया था। आखिर माँ बेटे के बीच ऐसा भी क्या हुआ जो दोनों में इतनी दूरियां आ गई? नमस्कार, जनसत्ता में स्वागत है आपका। सियासी किस्से में आज बात सिंधिया राजघराने की, जिसे हम निकाल कर लाए हैं राशिद किदवई की किताब द हाउस ऑफ सिंधियाज अ सागा ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड इंट्रीग से। माँ बेटा और सरदार आंगरे। सरदार आंगरे ये वो नाम है जिसे सिंधिया परिवार को नज़दीक से जानने वाले राजमाता और माधवराव सिंधिया के बीच दूरियों की असली वजह मानते हैं। राशिद किदवई की किताब द हाउस ऑफ सिंधियाज अ सागा ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड इंट्रीग के मुताबिक एक दौर था जब राजमाता विजया राजे सिंधिया के संबंध बेटे माधवराव के साथ बेहद करीबी थे। माधवराव अपनी माँ से उतने खुले हुए थे कि उनसे अपनी गर्लफ्रेंड्स तक की चर्चा करने से नहीं हिचकते थे। सिंधिया परिवार को करीब से जानने वाले कहते हैं कि इस नज़दीकी को दूरियों में बदलने की वजह काफ़ी हद तक सरदार आंगरे थे, जो उन दिनों राजमाता के बेहद करीबी हुआ करते थे। कैसे आई माँ बेटे में दूरियां? जाने माने पत्रकार एनके सिंह 30 सितंबर 1991 को लिखे गए अपने आर्टिकल डोमेस्टिक बैटल बिटवीन विजया राजे एंड माधव राव सिंधिया में लिखते हैं, माधवराव सिंधिया ने मुझे बताया था कि उनके और राजमाता के संबंध 1972 से खराब होना शुरू हुए थे, जब वो अपनी माँ की पार्टी जनसंघ को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता लेना चाह रहे थे। माधवराव ने स्वीकार किया था कि ऑक्सफोर्ड से लौटने के बाद जनसंघ की सदस्यता लेना उनकी बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन उसी लेख में एनके सिंह ने आगे लिखा था कि सरदार आंगरे का मत इससे अलग था। उन्हें राजमाता बाल और दूसरे लोग बाल्डी कहते थे। उनका मानना था कि माधवराव ने इसीलिए डर कर अपनी माँ का साथ छोड़ दिया क्योंकि जनसंघ मध्य प्रदेश में 1972 का विधानसभा चुनाव हार गई थी। माँ ने कहा, अंतिम संस्कार मत करना, बहरहाल वजह जो भी रही हो, मगर आगे चलकर राजमाता विजयाराजे सिंधिया अपने इकलौते बेटे माधवराव सिंधिया से इस कदर खफा हो गई थी कि उन्होंने 1985 में अपने हाथ से लिखी वसीयत में कह दिया था कि मेरा बेटा माधवराव सिंधिया ना तो मेरा अंतिम संस्कार करेगा और ना ही मेरे अंतिम संस्कार में भी शामिल होगा। 2001, ये बात और है। जब 2001 में राजमाता का निधन हुआ तो मुखाग्नि बेटे माधवराव सिंधिया ने ही दी थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।